सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम्
समसत्तु बंधु भग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समरो। आचार्य भगवंत ने कुंद कुंद देव ने जो यह श्रमणों के लिए वरदान के रूप में दिया है, हे श्रमणों, तुम अपनी पहचान करना चाहते हो तो ये अपने पास एक दर्पण को रखो। यह दर्पण जो आपको अपना मुख दिखाएगा। संसार में जितने भी दर्पण होते हैं वे सारे सारे भिन्न पदार्थों को दिखाने वाले होते हैं, किंतु यह वह दर्पण है जिसमें आप अपनी पहचान कर सकोगे। जाओ, कहीं भी जाओ, कोई परवाह नहीं, कहीं भी रहो कोई परवाह नहीं, और कुछ भी करो, कुछ भी चिंतन करो, कोई परवाह नहीं। निरीवृत्ति हवे जदा साहु, मात्र निरीवृत्ति रखो अपने पास, कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुंदकुंद देव ने मोक्ष मार्ग का जो स्पष्टीकरण प्रारंभ और अंत तक जो विश्लेषण किया है वह अभूतपूर्व है। शास्त्रीय भाषा, तात्विक भाषा लोगों की दृष्टि में जटिलता का एक समस्या आ जाती है, लेकिन इस सब समस्याओं का हल सरलता के साथ कुंदकुंद देव ने अपनी कृतियों में दी है। जिसके पास शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है, ऐसा नहीं, होते हैं, किंतु उसमें समता रखना यह श्रमण की पहचान है। शत्रु नहीं है ऐसा कहा गया है, नहीं, ये गलत है। शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु को शत्रु नहीं मानना यह श्रमण की पहचान है। मित्र नहीं होते ऐसा नहीं, मित्र तो होते हैं, आरती उतारते हैं और आरती को नीचे ही नहीं रखना चाहते हैं। 24 घंटों बैठे रहो यहीं पर, महाराज हम तो आरती उतराएंगे। आप तो उतरे हैं और हम भी उतरेंगे, ये चाहते हैं। तो इसलिए मित्र भक्त सब कुछ है, तो जब मित्र है भक्त है तो वैरी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको वैरी के रूप में नहीं स्वीकारना, उनको मित्र के रूप में नहीं स्वीकारना, यह कुंद कुंद सिखाते हैं। नहीं है तो फिर समता की क्या आवश्यकता, जब वैरी ही नहीं है तो समता की क्या आवश्यकता, जब मित्र ही नहीं है तो राग क्या वस्तु होती है। राग और द्वेष उसी के लिए होते हैं जो इष्ट के लिए राग होता है और अनिष्ट के लिए द्वेष हुआ करता है। और मां रज है, मां मुझ है, मां दुस्सह है, बस ये तीन शिकायतें हैं। सम्यक दृष्टि, राग द्वेष मोह तीनों नहीं करता। यदि करता है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर ऐसे कैसे आगे बढ़ गया। तो वह वीतराग सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि मानते हैं कुंदकुंदाचार्य, तो नीचे के कुंदस्थानों को नहीं मानते, मानते हैं लेकिन वह रत्नगुण श्रावकाचार्य के अनुसार मानते हैं, वे आगम के अनुसार मानते हैं, किंतु श्रमण के लिए यदि चाहिए तो इस प्रकार का चाहिए। एक लेबल है, एक एड्रेस है, एक लक्षण पहचान है, इसके बिना उसको स्वीकारते नहीं। विद्यार्थी सब एक नहीं हो सकते। एमए का छात्र जो छात्र होता है वह शोध छात्र बनने वाला होता है, उसको स्नातक स्नातकोत्तर कहा जाता है। तो मुनि वह दीपक है जिसके माध्यम से चारों ओर उजाला, इसलिए उस दीपक को बहुत जोखिम के साथ सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उसी को दीपक हम कहते हैं जिसके द्वारा स्वयं चले और दूसरे भी चल सके। स्वयं हम चले तो मतलब नहीं, दूसरे भी चल सके, दूसरे के लिए भी उजाला मिल सके, उसी को हम दीपक बोलते हैं। तो यह गाथा जो दी है, जिसके पास शत्रु और मित्र होते हुए भी समता है उन दोनों में, सुख और दुख नहीं है, ऐसा नहीं है सुख और दुख जिस दृष्टि के जिस व्यक्ति की दृष्टि में है वह तो विकल्प वाला है, नहीं गलत बात है। सुख को सुख जानना, दुख को दुख जानना, फिर भी इसको एक को अच्छा मानना और एक को बुरा मानना तो गलत हो गया। दोनों को जानते हुए भी एक में राग और एक में द्वेष नहीं करने रूप प्रवृत्ति, यह समता, यह ज्ञानी का स्वभाव होता है। शत्रु मित्र, संयोग और वियोग, लाभ और अलाभ, कंचन और कांच, दोनों में समता रखना। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि ये दोनों बेड़ी है या दोनों हथकड़ी है, और एक में लोहे की हथकड़ी है और एक में राइट में तो सोने की है और लेफ्ट में लोहे की है, तो पहना दिया जाए, दोनों को समान मान लेंगे? नहीं, एक लिए तो ताला लगा करके चाबी लगाया जाता है और एक तो बाहर रखा जाता है। और फिर भी आप कुंद कुंद के सम्यक दर्शन को पहचानना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा। तीन काल में आप कुंद कुंद को नहीं समझ सकोगे, ध्यान रखो। और किसी को समझ सकते हैं लेकिन कुंद कुंद को समझने के लिए बड़ी भीतर की आंख की आवश्यकता है। जो गत रविवार के दिन या और कोई रविवार के दिन हमने कहा था कि आज का तूफान जैसा है, उस तूफान में भी समता का दीपक तो जल सकता, बाकी जितने भी हैं या तो बिजली के दीपक जल सकते हैं, लेकिन आजकल बिजली भी गोल होने लगा है। ऐसा नहीं, ऐसे दिव्य मार्गदर्शन आचार्य कंदकुंद ने जो इस इन ग्रंथों के माध्यम से दिए, श्रमण के लिए उन्होंने मुख्य अपना केंद्र और उपदेश का पात्र माना, क्योंकि वह श्रमण रहेगा तो यह श्रावकाचार रहेगा, और श्रमण और श्रावकाचार ये दोनों रहेंगे, दुनिया में कोई भी प्रलय आ जाए उसको कोई पागल बाका नहीं कर सकता। ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन स्तंभ के ऊपर यह जैन शासन का पूरा महाप्रासाद खड़ा है। यदि यह समाप्त हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यह इसमें से मुख्य रूप से वह श्रमण रहेगा, और श्रमण के लिए वह श्रावक एक प्रकार से अपना तन मन धन जो कुछ भी आवश्यक है सहयोग दे करके वह अपने साथ आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाएगा मतलब उसके माध्यम से आगे नहीं बढ़ता, वह पीछे चलेगा, यूं कह देना। कुछ श्रावकों को ऐसा लग जाए कि महाराज जी के संग को हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे नहीं बढ़ा देते। महाराज जी आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे लिए पीछे रास्ता हो जाता, ध्यान रखो। अनुवृत्ति कहलाता है, अनुवृत्ति वही है जो महावृत्ति आगे बढ़ता है तो अनु मैंने पीछे चलने वाला जो वह अनुवृत्ति होता है। तो पीछे तभी चले जब आगे वाले चले, महाराज चले तो पीछे वाले लाइन चले। इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद देव ने श्रमणों को चला करके जो उपदेश दिया है श्रावकों के लिए भी वह वरदान सिद्ध हो गया। आश्रमण चर्य के बारे में बात चल रही है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने हमें एक बात कही थी, वो उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और यह सौभाग्य का विषय था कि वहां पर पहुंचे जहां पर ब्यावर है। अजमेर से 30-35 किलोमीटर पर एक नगर है, जिला नहीं है लेकिन नगर अवश्य है, लेकिन वहां पर आचार्य श्याम सागर महाराज जी का चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अजमेर के सेठ सौकर देखते रह गए, वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा हुआ, आप लोग संत सागर महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा लेकिन कुछ भ्रम भी बहुत सारे हैं, उन भ्रमों को भी आप लोगों को निकालना चाहिए। यदि महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी भ्रम रखते हैं तो वह भ्रम भी उन व्यक्ति के महत्व को कम करने में कारण हो जाते हैं। आप लोगों को विवेक के साथ हमेशा हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि श्रमण संस्कृति हमेशा हमेशा उज्ज्वल रहती है, उज्ज्वल रहना चाहिए। कुछ कमियां होती हैं यह हम लोगों के ऊपर निर्धारित है, लेकिन संस्कृति कभी भी कमी महसूस नहीं करने देती, उसमें एक दाग भी जो है अच्छा नहीं माना जाता। आचार्य श्याम सागर द्वय का चातुर्मास हो रहा था वहां पर, सुना, आचार्य श्याम सागर द्वय का हो रहा था, द्वय मैंने दो होते हैं, आचार्य श्याम सागर एक नहीं थे, आचार्य श्याम सागर दो थे और दोनों श्याम सागर महाराज शांति के निदान थे। और इन दोनों का कैसा चातुर्मास मिलकर के हुआ, तो ये गृहस्थ हमेशा हमेशा पक्ष विपक्ष से चलते हैं, इनकी यहां पार्टियां चलती हैं, देश की ओर दृष्टि नहीं रहती। एक व्यक्ति का एक ही पैर दिखता, दूसरा पैर नहीं दिखता, एक व्यक्ति को एक ही पैर दिखता, दोनों पैरों से ही वह काम होता है लेकिन वह नहीं देखा जाता। और वहां पर जाकर के महाराज ने देखा, एक को देखते हैं तो वही मूर्ति दूसरे में दिखती है, उसको देखते हैं तो दूसरे में वही दिखती है। दो दर्पण हमेशा हमेशा समान हुआ करते, ध्यान रखना, फ्रेम में भले ही अंतर हो सकता है, एक 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 सोने का फ्रेम लगा सकता है और एक पीतल का लगा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, वो सोना यदि ज्यादा बढ़ करके भीतर आ जाता है तो वह दर्पण समाप्त हो जाता है। दर्पण तो हमेशा दर्पण हुआ था, किसी भी प्रकार से दर्पण में विकार नहीं आता, दर्पण में भेद भिन्नता नहीं रहती, छोटा बड़ा दर्पण के भेद नहीं है, ये केवल फ्रेम और आकार प्रकार के हैं, किंतु छोटे से आईने में भी आप देखें तो आपका मुख उतना ही दिखता जितने बड़े दर्पण में भी दिखता, और दोनों दर्पण समकक्ष शांत शांत बैठे थे, देख करके रह गया। ओहो, एक दक्षिण के शांत सागर, फिर बाद में पहचानना तो है, अब कैसे पहचाने, तो एक दक्षिण के शांत सागर हो गए और एक उत्तर के शांत सागर हो गए। उत्तर में कोई कमी है और दक्षिण में कोई ज्यादा है, यह हम लोगों की भेद भिन्नता है। और आज जो वर्तमान में चल रहा है इसको देख करके मुझे बार बार ऐसा सोचने में आ जाता है, इन लोगों के सामने इन व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए, और कहने से इन लोगों के समझ में नहीं आता। जब वीतरागी संत के गीत आप गाना चाहते हैं तो एक को आगे बनाएंगे तो दूसरी की अवहेलना होती, ध्यान रखो। वीतराग संत तो वीतराग संत हुआ करते हैं, कई बार कहने के उपरांत में नहीं मानते तो हम नहीं सुनाते, लेकिन हम कभी भी इस श्रमण की व्याख्या को गौण नहीं कर सकते। महाराज ने अपना एक काव्य महाकाव्य का लेखन किया था, पूर्ण किया था और जाकर के शांति सागर महाराज जी के सामने रखा कि महाराज जी ये लेखन हुआ है। क्योंकि उस समय में वहां पर ये कोई ब्रह्मचारी रहते थे, अब मैं बाद में, या समय नहीं है इतना ज्यादा तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन वहां पर खोल करके सुनाया गया, चूंकि महाराज जी ने कहा कि भैया पंडित जी यहां पर भी एक बैठे हैं, उनको दिखाओ कैसा क्या है। तो सारे सारे पढ़ लिया गया, अवलोकन कर लिया गया। फिर इसके उपरांत एक इंद्रलाल शास्त्री थे जो जयपुर के थे, हाँ, तो उन्होंने भी उसका प्रकाशन संबंधी जिम्मेदारी लेकर के और ब्रह्मचारियों को कहा इसका प्रकाशन होना चाहिए। कालांतर में इसका प्रकाशन होकर के इंद्रलाल शास्त्री ने आदि वक्ताओं में संस्कृत में, जहां तक मुझे स्मरण है, एक दो पृष्ठीय लेख है संस्कृत में है। तो उससे उस समय ऐसा ज्ञात हो गया था कि इतनी प्रौढ़ रचना का आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृत के प्रति उनका बहुमान जागृत हुआ और दोनों आचार्यों का वहां पर समकक्ष चातुर्मास हुआ वहां के समाज के। तो सौभाग्य तो थे, लेकिन जो कि अजमेर जिला के अंतर्गत होने के कारण प्रतिदिन वहां पर टीकम चंद जी जो भागचंद सोनी के पिताजी थे या और कोई भी संबंधी हो सकते हैं, और वो प्रतिदिन आना जाना उनका बना था और आनंद संपन्न हो गया है। कई लोग महाराज जी इस पंथ के हैं, इस पंथ के हैं, वो आगम पंथी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि किसी महाराज जी को पंथ के नाम से जानना यह भी एक निर्ग्रंथ पंथ के लिए दाग है, हाँ, क्योंकि किसी महाराज को वीतरागी को इस ढंग से देखना ठीक नहीं समझता, किंतु ये आर्ष मार्ग के लिए भी एक दाग है। किसी महाराज को किसी पंथ से चपेट में नहीं रखना चाहिए। महाराज तो महाराज है, 28 मूल गुण के धारक है, वे अपने शक्ति के अनुसार आचरण कर रहे हैं। वीतरागता के अपेक्षा से, समता के अपेक्षा से इसमें कोई भी तुलना नहीं है। और उस समय वे भी शांतसार महाराज जो आचार थे, हमें यह सोचने में समझ में नहीं आया, सुन तो लिया हमने, हमारी धारणा तो ऐसी थी। महाराज जी ने कहा कि यह हम लोगों की भी धारणा थी, लेकिन यह गलत थी। आवागमन इतना कम होता था कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा इतना जल्दी मालूम नहीं होता। आज के जो आवागमन की व्यवस्था इतनी हो गई है, काल और क्षेत्र दोनों परमाणु के रूप में सूक्ष्म केंद्र बन गए, वह विकेंद्रीकरण जिसको नहीं, बिल्कुल केंद्रीकरण हो गया है। आज एक समय में कहीं भी जा सकते हैं कि समय आज कोई बहुमूल्य नहीं, ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा समझ में आता था। शांत सागर द्वय का जब उन्होंने दर्शन किया, सब कुछ किया, तो लगा कि एक से एक बढ़कर के है ये शांत सागर महाराज के। उस समय की बात है जिस समय आज वह कम से कम भी 50 वर्ष का तो हो गया होगा इतिहास, उस समय की बात थी। शांत सागर महाराज जी से ही परंपरा चालू हो गई है, यह इस बात को कभी भी तूल नहीं देना चाहिए। मैं इस पक्ष का नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि उससे पहले दिगंबर तो खंडित हो जाएगा, और ऐसा था नहीं। आज एक श्वेतांबर महोदय ने एक लेख निकाला जो ऐतिहासिक लेख बन गया है, और 700 पृष्ठी एक इधर उधर के कूड़ा कचरा जैसे इकट्ठित करके अपने मस्तिष्क की उपज के माध्यम से एक बड़ा ग्रंथ करने का, निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। उसका आद्योपांत जब हमने अवलोकन किया तो उसमें ये कोट किया गया कि बीच में दिगंबर परंपरा 700-800 वर्ष के लिए वच्छिन्न बिन्ते थी नहीं। इस बात को देख करके हमें बहुत दुख होता है या खेद होता है, अरे ये कैसी बात करते हैं। हाँ, किसी क्षेत्र में किसी काल में इसका अभाव हो सकता है, केवल शांति सागर महाराज जी को लेकर के हम आद्य हैं ऐसा कहना ये हम लोगों के लिए इतिहास ठीक नहीं है। हाँ, इससे जो है कि परंपरा बिल्कुल हमारे अर्वाचीन सिद्ध होगी, अरे ऐसा नहीं हो सकता। दिगंबर तो पहले था और 25 अपने पंचम काल के अंतिम समय तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, किसी काल में किसी क्षेत्र में कम हो सकता, कुछ संख्या बढ़ सकती, कभी घट सकती, लेकिन नहीं था, ये गलत बात है। इसको कम से कम इतिहास नहीं बनाना चाहिए। जो बनाना चाहते हैं वे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूं। ये यद्यपि आप लोगों के लिए इस समय पर अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसी समय पर यह समझ रखने योग्य विषय है अन्य समय में तो समय समय सार तो मैं रखता ही हूं, लेकिन परंपरा की बात जहां पर होती है वहां पर यह रखना आवश्यक है। एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी और सुनने के आदि भी नहीं आप, इधर उधर के बातें जो उड़ जाते हैं उसको आप क्षायिक समय दर्शन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अखबार में निकली हुई बात। लेकिन ऐसा नहीं कि सुनने में आया और पढ़ने में भी आया और वह सही घटना है, ऐसा लगता है कि वो जो छानी के शांत सागर महाराज जी थे उन्होंने आचार्य शांत सागर महाराज जी के जो शिष्य एक कुंतु सागर हुए उनको आचार्य पद सर्वप्रथम दिया था। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये हमने गुजरात जब गए थे तारंगा में ये हमने पाया और आज तक किसी को भी ये ज्ञात नहीं। आर्षमार्ग कहते हैं, मुझे कानों में दर्द जैसा लगता है। आर्षमार्ग क्या होता है? ऋषियों के द्वारा चलते हुए होने के उपरांत जो राजमार्ग होता है उसका नाम आर्षमार्ग है। कपड़े वालों के द्वारा चलने से नहीं बनता आर्षमार्ग, ध्यान रखो। और कपड़े वाले यदि दिगंबर के बीच में आ जाते हैं तो वह इस मार्ग को दूषित कर देते हैं। आज पंथवाद में पढ़ करके आर्ष मार्ग के लोहा देने वाले बहुत सारे से मिल जाते हैं, लेकिन आर्ष मार्ग के अध्ययन करो ऐसा कहने से वो करने के लिए तैयार नहीं। और उनके लिए समर्थन देने वाले भी कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो वो उसी को पढ़ते रहते हैं। उन लोगों से मेरा बहुत अनुरोध है, कम से कम आर्ष शब्द का महत्व कायम बनाए रखो। वर्ष वस्त्र के साथ रह करके आर्ष मार्ग के आप क्या गौरव बढ़ाएंगे तो दिगंबर मुनि महाराज बनेंगे, ध्यान रखो। आज समाज में कुछ ऐसे नेता लोग होना चाह रहे हैं और हो रहे हैं जो वस्त्र पहने हुए रहते हैं और मुनि महाराज को चलाना चाहते हैं। मुनि महाराज यदि चलते हैं तो आर्ष मार्ग के नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखो। वस्त्र वालों को दिगंबरों के पास जा करके नमोस्तु कर देना चाहिए, भगवान आपने आर्ष मार्ग हमें दिखाया, सुरक्षित रखा, हमारे लिए उपदेश दो। चंद पंक्तियां भी नहीं आती, कौन सा ग्रंथ कहां पर कैसा लिखा गया ये भी मालूम नहीं है और वो उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिगंबरत्व के लिए उपदेश क्या देंगे ये लोग वस्त्रधारी। महाराज ने एक बात कही थी कि ज्ञानसार महाराज ने शांतसार महाराज कहा करते थे, वस्त्र वालों के पास जाकर के बैठना नहीं चाहिए, वस्त्र वाले आ जाते हैं तो आशीर्वाद दे देना चाहिए, वस्त्र वालों के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, वस्त्र वाले आएंगे क्या वस्त्र चले, कभी भी यह भूल करके नहीं करना चाहिए। और वस्त्र वालों की बात सुनना तो चाहिए लेकिन मानना नहीं चाहिए, शास्त्र की बात मानना चाहिए तो ये गौरव है। नहीं है तो निश्चित रूप से वह वस्त्र वाले इस शास्त्र का ये बिल्कुल अपमान कर देंगे, कभी भी वो कुछ भी कह सकते हैं, वो मार्ग नहीं हो सकता। दूसरी बात, महाराज जी ने एक बात कही थी, यह आप लोगों को ध्यान में रखना कि आचार्य कुंतु सागर जी को किसने आचार्य पद दिया था। दूसरी, इससे पहले एक सुधर्म सागर जी हुए बताते, वो आचार्य शांत सागर महाराज के शिष्य माने जाते हैं। उनके बारे में भी आज इतिहास में कुछ भी नहीं मिलता, जबकि ग्रंथ मिलते, उन्हीं ने कुछ शास्त्र लिखे हैं श्रावकाचार्य, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है। शांत सागर महाराज के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में अवधारणा बना लीजिए। शांत सागर महाराज के बारे में कोई भी बात करते हैं तो आप आधार के साथ कहिए, अर्वाचीन को आप न देखिए, प्राचीन को भी देखने का प्रयास कर लीजिए। तीसरी बात मैं यही कहना चाहता हूं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक बार कही थी, शांत सागर महाराज ने क्या कहा था, एक विद्वान गए, पंडित जी गए और महाराज जी के पास जाकर के उन्होंने नमोस्तु किया और पुष्प चढ़ाए। कहां पर चढ़ाए? उनकी चरणों के ऊपर पुष्प चढ़ाए। सुन रहे हो क्या? नहीं, टेप हो रहा है क्या नहीं। जैसे शानसार महाराज इतिहास करना चाहते थे उसी प्रकार मैं भी ये कहना चाहता हूं, ये टेप अन्यत्र भी सुना लेना, ताकि वो शानसार महाराज के नाम से क्या क्या करना चाह रहे, क्या क्या कर रहे हैं वो याद रखे, अच्छे ढंग से करिए आप। यदि मान लो गलत चलत करेंगे तो अवश्य ही यह भी एक अभियान चालू हो जाएगा कि शानसार महाराज के महत्व कौन कम कर रहे हैं। पंडित जी ने जाकर के महाराज जी के चरणों के ऊपर पुष्प चढ़ाए, पंडित जी आप और ये क्या कर रहे हैं, महाराज ये हमारी भक्ति आपको इससे क्या मतलब है? नहीं पंडित जी ये गलत है। गलत नहीं महाराज, ये तो हमारे भक्ति है, हम तो आपके चरणों में पुष्प चढ़ाएंगे, आपके चरण पूज्य है। पंडित जी आप चढ़ाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, और मना करेंगे तो आप मानेंगे भी नहीं, और मना कर रहा मेरा धर्म नहीं। आप जानो पूजन क्या होते कैसे है, पूजन करना ये ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे चरणों के ऊपर मत चढ़ाओ, ये तो पुष्प है महाराज, पुष्प है मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, ये चढ़ाएंगे तो गलत काम होगा। क्यों महाराज? ये है इसलिए कि ये इन पुष्पों में जीव है, से ही बदबू अपने जीवन में फैलती रहती है, हम उस बदबू से दूर रहना चाहते हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे। आश मार्ग को यदि सुरक्षित रखना है तो उसको 100 टंच सोने को ही हम टंच 100 टंच सोने कहेंगे, भले ही आभरण पहनेंगे 14 कैरेट का कोई बात नहीं, वो शैतल्य की बात है, लेकिन सोना तो 100 टंच सोना ही होता है और 16 बानी का ही सोना होता, उसमें एक रत्ती मात्र भी बट्टा तो बट्टा है, उसको हम सोना नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिए। और भी कई बातें हैं लेकिन मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। आज धीरे धीरे दिगंबरत्व के प्रति आस्था होते हुए भी बीच बीच में शैथिल्य के कारण उसको सिद्धांत का रूप दिया जा रहा है और उसके लिए बहुमत को भी एकत्रित किया जा रहा है। चुनाव की पद्धति भले ही बहुमत से चलती हो, ध्यान रखो, और यदि बहुमत की पद्धति चलती है तो जिन शासन कभी भी चल नहीं सकेगा, क्योंकि हमेशा हमेशा मिथ्या दृष्टियों का ही बहुमत चलता है और असंख्यात ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और मुनि शासन यदि चलना चाहते हैं तो वह बिल्कुल ही करोड़ों में ही मिलेगी, कहां अनंत अनंत जीव संसार शासन को चलाने वाले, और कहां जिन शासन को करोड़ों में। लेकिन जिन शासन जो चलता है बहुमत से नहीं चलता है, अल्पमत से चलता है, लेकिन अल्प बुद्धि के द्वारा नहीं चलता, ये ध्यान रखो। अल्प बुद्धि चलता है, बहुमत से नहीं चलता है, अल्पमत से चलता है, लेकिन अल्प बुद्धि के द्वारा नहीं चलता, ये ध्यान रखो। अल्प बुद्धि के माध्यम से बहुमत बना करके यदि जिन शासन चलाना चाहे तो ध्यान रखो, खबरदार, एक भी सिंह गर्जना करे सारे सारे हाथी कहां पर पहुंचेंगे पता नहीं लगेंगे। हाँ, और सिंह को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वहां कोई मुझे पकड़ लेगा, आ तो ले कम से कम। आज तक सिंह तो सिंह ही माना जाता है, उसके गले में कोई पट्टा नहीं बना सकता। आज तक सिंह किसी के अंडर में रह भी गया कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, वह भले ही रिंग मास्टर उसे अग्नि का भय दिखा दे लेकिन लगा नहीं सकता, वो अग्नि लगा करके देख ले उसी समय वह दहाड़ करके समाप्त कर देगा। यह सिंह वृत्ति रखने वाला मुनि शासन है, जन शासन है, और यह पंचम काल के अंतिम समय तक रहने वाला है। जिन व्यक्तियों ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में जो कुछ लिखने का और सुनाने का प्रयास किया है, उनके लिए याद रखना चाहिए कि शानसार महाराज जी कौन थे और कौन से शानसार महाराज ने यहाँ पर किस ढंग से धर्म की प्रभावना की, यह हम भी जानते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखो हमने भी कुछ सीखा है, और हमने ऐसा नहीं सीखा जहां कहीं भी जा करके। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी वो है जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद को दे करके और अपने सामान्य साधु के रूप में संकल्प पूर्वक और अपने अभिमान का त्याग करके और संलिखना धारण कर ले, मैंने अपने आपके जीवन को उपकृत माना उस दिन, मैंने अपने आपके जीवन को धन्य माना उस दिन कि मैंने उसी दिन जाना और प्रतिज्ञा की, हे भगवान ऐसे मान के ऊपर कुठाराघात करने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा, लेकिन वह आचार्य ज्ञान सार महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे अवश्य मिलेगा। मैं उन्हीं को प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपका हुआ उसी के अनुसार मुझे होना चाहिए, भले ही ज्यादा ना हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए, यह मेरा अधिकार है और मांग है। और उसी प्रकार मेरे सारे सारे विचार, मेरी भावनाएं और मेरी कामनाएं पूरी पूरी वो करते रहे। आज 30 वर्ष हो गए मुझे, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है कि हमेशा हमेशा स्वयं अकेले रहता है, लेकिन कभी डरने की बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है। जो कोई भी जैसे तुम आए उसी के अनुसार कोई भी पास आ जाता है तो उसको आर्ष मार्ग को बता देना, कुंद कुंद को दिखा देना, कोई माने या न माने लेकिन कुंद कुंद को रखते समय किसी प्रकार के हिचकिचाहट नहीं रखना। वस्त्र वालों से बात तो करना लेकिन वस्त्र वालों से चिपकना नहीं, ध्यान रखना। हाँ, कि वह लोह जंग खाया हुआ रहता है उससे हमेशा परहेज रखना, क्योंकि उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो वह बहुत कुछ खतरा हो सकता है। परिग्रह से आराम से दूर रहना, लेकिन जिन शासन की महिमा को दिखाने के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं देखना, इस प्रकार की गंभीरता और निरीहता के बारे में, निर्भीकता के बारे में मुझे संस्कारित किया वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, ये ध्यान रखो। इसके उपरांत उन्होंने भी और भी कुछ बातें कही थी, समय आप लोगों का ज्यादा हो गया है, हमने कहा था इन लोगों को लेकिन ये लोग नहीं माने। ये कहा था कि देखो ध्यान रखना ये आ तो रहा है शनिवार के दिन, और मानो इस बात को, रविवार हो जाता तो सब लोग सुन जाएंगे, नहीं उसी तिथि के दिन रखना तो रखो। तो वे कहने लगे कि सुबह रख दिया जाए, सुबह तो नहीं करूंगा क्योंकि इतनी जल्दी लोग आ नहीं पाएंगे, और ढाई ढाई घंटे का तो समय नहीं मिल पाएगा सुबह, इसलिए मैं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे गर्जना करना है। जिस प्रकार आचार्य पद को स्वीकार किया जाता है, आचार्य पद के स्वीकर्ता के साथ आचार्य पद के त्याग का विधान भी, मूलाचार, भगवती आराधना, जितने भी आचार शास्त्र हैं वो सारे सारे हैं, लेकिन आज उस परंपरा का अभाव जैसा हो रहा है। जो आचार्य सांसार महाराज को मानने वाले हैं उनको सोचना चाहिए आचार्य परंपरा पद को छोड़ने का, यह परंपरा क्यों छोड़ दी गई है और क्यों छूटी जा रही है, ये क्या आगम इसके अनुसार नहीं चल सकते हम, क्या आचार्य ज्ञान सांसार महाराज ने इसके लिए मना किया है, ये प्रश्न उठ सकता है, एक चिंत है, ये मेरा नहीं है, ये ग्रंथ का है सवाल। आज आर्ष परंपरा को सुरक्षित रखने का है, किसी घर की परंपरा को नहीं है, ध्यान रखो। हमने अपने परंपरा को यदि उस परंपरा से जोड़ दी है तो वह आचार्य कुंद कुंद तक पहुंचेगी, केवल शांत सागर मार्ग तक नहीं पहुंचेगी, ध्यान रखना। यदि वहीं तक हो जाएगी तो हमारा यह धर्म ही अलग शुद्ध हो जाएगा और हम इस प्रकार नहीं बना रहना चाहते। दूसरी बात यह है, आचार्य शांत सागर महाराज जी अपने जीवन काल में दक्षिण में एक महान वयोवृद्ध महातपस्वी के चरणों में गए हैं, जो वो संलेखना ले रहे हैं। सोचने की बात है, आचार्य शांत सागर जी गए हैं, दूसरे कोई नहीं, आचार्य शांत सागर जी गए हैं। यदि आचार्य शांत सागर जी ही उस समय है तो वो संलेखना कैसे ले रहे, 8-8 दिन के उपवास करके एक आहार लेने वाले संत भी उस समय थे, और उसको देखने के लिए वह स्वयं शांत सागर महाराज संघ को लेकर के गए हैं, और उनकी समाधि वहीं पर दक्षिण में हुए हैं। और आप देख लेना उनके बारे में कौन क्या फैला रहा है, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि आचार्य सांसार महाराज जी की क्या धारणा, क्या उदारता, क्या बहुमान था दूसरों के प्रति, ये आप लोगों को सीखना चाहिए। यदि नहीं सीखते हैं तो आचार्य सांसार महाराज जी के महत्व को आप ही अपने मुख से कम कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा तो उसको आप कह सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा अब उसके बारे में तो आपको सही सही करना चाहिए। आठ दिन के बाद एक बार आहार करने वाले हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और वह चित्र भी देखा है, उसमें शांसार महाराज जाकर के संग सहित बैठे हैं और वह संन्यास्त है। फोटो एक धुंधला धुंधला सा फोटो है और उसमें दोनों संगों का मिलन, और वो ऐसा है। आगे क्या हुआ, उनकी परंपराओं ने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं। इससे हमारा दिगंबरत का गौरव बढ़ता है और आज सुन रहे हैं बरसों से इसके बारे में दिगंबर में वाद विवाद होते हुए, यहां तक वाद विवाद वह चला गया कि कोर्ट कचहरे में चला गया। जब ये सुना तो हमने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे पास आए नहीं, वहां कोर्ट में बात जो गई है उसको सुनने के लिए, सुनाने के लिए आए हैं, मैं नहीं सुनूंगा, जाओ। इससे क्या होता, कोई ऐसा वातावरण होना चाहिए समाज में जिसके द्वारा ये सब बातें शांत हो जाए और हमें वितराग मर पर जाने का एक सौभाग्य और अवसर प्राप्त हो जाए। तब दया के बारे में यह बात सुनने के उपरांत वे जो पंडित जी थे वहां चुप बैठ गए। आज इस बात को क्यों छुपाया जाता है और आचार्य ज्ञान सागर महाराज के लिए क्यों कहा जाता है, वो 13 पंथ के थे। फूल चढ़ाना 13 पंथ हो गया, फूल चढ़ाना जो है 20 पंथ, ये सारे पंथ है ना आप लोगों के पास है, महाराज जो लोगों के पास कुछ नहीं है। और इस चपेट में जो महाराज को यदि आप करते हो तो खबरदार, ध्यान रखना आप लोगों के महाराज ने, बाद में आप लोगों के महाराज, आप लोगों के लिए एक घंटे के लिए आ सकते हैं, वो घर में आएंगे उस समय की बात कह सकते हैं हमारे यहां हमारे महाराज आ गए, विश्व के महाराज रहते हैं, ध्यान रखो आपके महाराज ने। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शांसार महाराज हमारे घर के हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए ये क्या कहा जा रहा है। इसलिए आज जो आचार्य पद छोड़ने की बात आती है इसके बारे में आगम में जो उल्लेख है उस उल्लेख का भी अनुपालन कर लेना चाहिए, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया था उसका आज आप लोगों को करना चाहिए। समय ज्यादा हो गया है, यदि शब्द हमारे आप लोगों के कानों के लिए विशेष रूप से यदि बाधा पहुंचाए हो तो उसके लिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को प्रशंसा प्रशंसा के शब्द तो कितने सुनाए, वो भी खाली हो जाते हैं कभी कभी और कुछ बच जाते हैं, उन शब्दों को भी सुनाना आवश्यक होता है। मैं अपने बैटरी चार्ज और अच्छे ढंग से कर लूंगा और अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम शब्द संभव है कल रविवार मिल जाए आप लोगों को तो सुना दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की
दिनवाणी की स्तुति होगी, उसके साथ ही मैं अधिकार तो नहीं रखता हूं पर इतना जरूर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जिस विषय को आचार्य श्री ने छेड़ा है यदि कल भी इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे तो हम सब लोग धन्य हो जाएंगे।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वामन्दमानस्य ममास्तुतिः।